الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقولوا قولا سديدا، صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں لیکن اپنی باتوں کو تولتے نہیں ہیں کہ ہم کون سی باتیں کر رہے ہیں، کون سی باتیں کرنی چاہیے تھی. ہر چیز کے لیے ایک معیار ہوتا ہے، اس معیار سے اس کو پرکھا جاتا ہے. اگر ہمیں معیار کا علم نہ ہو تو بھی نقصان ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کون سی بات صحیح کی، کون سی غلط کی، کتنی صحیح کی، کتنی غلطی اس میں ہے. معیار موجود نہیں ہے. اور اگر معیار موجود تو ہو لیکن اس کی پرواہ نہ ہو تو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنے تمام باتوں کا معیار، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کیسے کرتے تھے اور کس طریقے سے سمجھاتے تھے، کس طریقے سے فرماتے تھے. یہ ساری باتیں الحمدللہ سنت رسول میں موجود ہیں. مثلا یہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پکی بات کر لیا کرو، یعنی اس میں کچا پن نہ ہو. تو اس میں یہ والی بات ہے کہ ابہام نہ ہو اور کمزوری نہ ہو. جس لیول کی بات ہو اس لیول پہ اس پر زور دیا جائے. تو اس میں یہ والی بات ہے کہ بات کرنے میں، بات کرتے وقت انسان سوچے کہ میری بات سے لوگ مطلب کیا لیں گے. میں کر کے آ رہا ہوں یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میری بات سے لوگ مطلب کیا لیں گے، اس بات کا استظہار ہو. تو اس وجہ سے کوئی ایسی بات، مطلب اس میں ایسی باتیں نہ ہوں جس کا کوئی دوسرا مطلب بھی لیا جا سکے، کیونکہ ہر چیز کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. تو اس کو بالکل واضح کرنا، ٹھہر ٹھہر کر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کو تین تین دفعہ کر لیتے تھے کہ ہر ایک اس کو سمجھ لیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لوگوں کی رعایت رکھتے تھے. مثلا مجمع میں کوئی شخص ہے، ان کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں، تو ایسے نہیں کہ فلاں تو نے اس طرح کیا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہوا لوگوں کو کس طرح کرتے ہیں، مطلب عمومی بات کر کے اس میں لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ بات کس کی ہو رہی. اور بات کرتے وقت یعنی وضاحت کے ساتھ مطلب بات فرماتے، اس میں کوئی اشکال نہیں رہتا. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اچھی طرح سمجھا دیتے، مثالیں بھی آسان دیتے جو ہر ایک سمجھ سکتا تھا، اور کسی کی دل آزاری نہیں کیا کرتے تھے. ہمارے ہاں ایک بات ہے کہ ہم لوگ چونکہ یعنی اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے، اس وجہ سے جو ہمارے جی میں آئے وہ کر لیتے ہیں. مثلا میں بڑا سچا بن جاؤں کہ میں بڑا سچا ہوں، میں بڑا کرا ہوں، تو یہ تو بڑی اچھی صفات ہے، لیکن اگر نصیب ہو جائے تو یہ تو بڑی اچھی صفات ہے. لیکن کسی شخص کا سچا و کرا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر ایک کی اصلاح کرتی رہے، کرتا رہے. اول تو اصلاح کا کام یہ ہر ایک کر نہیں سکتا، اس میں تو بہت تفصیلات ہیں. मिजाज को देखना पड़ता है, मौका देखना पड़ता है, माहौल देखना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों को देखकर बात करनी होती है। तो एक तो ये वाली बात है कि दूसरी बात ये है कि मिसाल के तौर पर इस्लाह मकसूद है ना, तो इस्लाह एक तरफ से तो नहीं होती, दो तरफा वाली बात होती है। यानी जो इस्लाह कर रहा है उसकी बात वो दूसरा ले भी रहा हो। मिसाल के तौर पर दूसरा आदमी उससे लड़ना शुरू कर लेता है, लेना तो क्या उससे फसाद पैदा हो जाता है, तो क्या इस्लाह हो गई या फसाद हो गया? फसाद हो गया तो इस्लाह तो नहीं हुआ। तो इस्लाह के लिए यही वाली बात है कि जिससे बात की जाए वो उसको इतना मोहतरम समझता हो कि वो उस इस्लाह को ले भी रहा हो, तो उस वक़्त जो है ना मतलब बात बनेगी। मसलन एक शख्स है, उसके वालिद ने कोई गलती की, अब वो वालिद को समझाना चाहता है तो वालिद जूता उठा के उसको मारना शुरू कर ले, तो इस्लाह हो गई? मतलब जाहिर उसका तो वालिद है ना, तो वो तो कर सकता है। तो हमारे एक साथी हैं, आलिम है लेकिन है बहुत मजाक किया करते हैं, उनके वालिद साहब भी ऐसी तबीयत थी उनकी। हाँ जी, तो ये चूंकि आलिम थे लेकिन थे मजाकिया, तो वालिद साहब ने एक मसला पूछा कि कैसा है। तो इन्होंने वालिद साहब से कहा कि आप मसला पूछ रहे हैं आलिम से, उसका पूरा एहतराम करे, दोजानों बैठ जाएं। हाँ जी, फिर कहे जी हुजूर ये मसला बता दें। तो उनके वालिद साहब ने बिल्कुल ऐसा किया, सारा किया उससे मतलब मसला बताएं। इसने मसला बता दिया, वो फिर एक ज़ोरदार थप्पड़ मुंह पे मारा। हाँ जी, ने कहा ये क्यों किया? ने कहा वालिद की हैसियत से, आपने आलिम की हैसियत से बात की, मैंने वालिद की हैसियत से बात की। तो मतलब ये है कि वो ज़ाहिर वालिद की इस्लाह तो आप इस तरह नहीं कर सकते, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप उनके बारे में बात करें उनके किसी बुज़ुर्ग के साथ, जिनका वो मोहतरम समझता हो कि इस किस्म की बातें, तो इसके लिए मशवरा करना चाहते कि क्या किया जाए, तो ख़ुद ही समझा देगा और उसके समझाने से फ़ायदा भी हो जाएगा। आप उसकी इस्लाह करना शुरू करेंगे तो बजाय फ़ायदे के नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से मतलब यह है कि मोहल्ले के अंदर हर शख्स की अपने एक इज़्ज़त नफ्स होती है, अगर आप उतने इज़्ज़त नफ्स को तार तार करें तो फिर आप उसकी क्या, बेशक आप सच्चे हों, यानी एक तो बात हो कि बात वाकई सच्ची हो ये एक इलादा बात है, मतलब ये भी ज़रूरी है समझना, लेकिन एक बात है कि वाकई सच्चे हैं आप, लेकिन अब उसकी इज़्ज़त नफ्स को तार तार करके आप बात करेंगे तो आपने उस पर जुल्म कर लिया। नतीजतन वो अगर दरमियान में कोई बात इस तरह कर ले तो अगर उसकी में गलती थी उसमें आपने उससे बड़ी गलती निकल आई तो बजाय फ़ायदे के नुकसान हो गया। तो इस वजह से यानी इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे हज़रत मौलाना अबरल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अम्र बिल मारूफ निस्बतन आसान काम है, नहल मुनकर बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नहल मुनकर में तमाम चीज़ों की रियायत रखनी पड़ती है। मसलन आप किसी को नरम जुबान से कह दे नमाज पढ़ो, तो अगर वो नहीं भी पढ़ने वाला तो उसके चांस बहुत कम है कि वो मुकाबले पे उतर आए और लड़ाई कर ले। ऐसे वही वो फिर भी बाज़ लोग ऐसे होंगे जो कर सकते हैं इस मसले पे, लेकिन चांस कम है। हाँ जी, लेकिन कोई आदमी बदनजरी कर रहा है और सही बदनजरी वाकई कर रहा है, आप उसको बहुत नरम जबान से कहे जी प्लीज जो मैं बदनजरी ना करो, तो इसका उसका जो है ना उस जांच का जवाब क्या होगा? हाँ जी, तो अब यह कि ज़ाहिर उसका तरीका इस तरह है ही नहीं कि आप कहें जनाब बदनज़री ना करो। आप उनके सामने ऐसी बात कर ले कि हम लोगों से जो बदनज़री होती है इसके ये नुकसान है, ये मतलब एक उमूमी मजमून के तौर पर आप इसमें बात कर ले तो उसको खुद ही एहसास हो जाएगा कि ये, और अगर नहीं है तो अपनी इसलाह करना ही नहीं चाहता, तो जो नहीं करना है तो तुम फिर इसकी कैसे करोगे, वो तो फसाद हो जाएगा ना। तो जो करना चाहेगा तो मतलब उसकी इसलाह होगी। हाँ जी, तो वो जो है ना हमारे पश्तों में एक ज़रबुल मिसल है, पश्तों के ज़रबुल मिसल थोड़े से टफ होते हैं, वो रफ़ होते हैं। तो वो कहते हैं मामश मेरे दरगड़े, इसके क्या तर्जुमा है? मुझे गिनो मत, मैं तुम्हारे अंदर दाखिल हो रहा हूँ, शामिल हो रहा हूँ। यानी मैं जरा बेशक मुझे अपने आप में न समझो, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर शामिल होना है। तो जाहिर लड़ाई है। तो इस वक्त इस किस्म की बात तो मतलब नहीं होनी चाहिए कि जो कि अकोमोडेट नहीं कर रहा आपको, आप दरमियान में क्यों अकोमोडेट हो रहे हैं? मिसाल कुछ लोग गपशप लगा रहे हैं, हाँ जी, और आप उनके अपना एक ग्रुप है, आप उसके अंदर मिक्स नहीं है, और आप जाकर उनके इसके साथ इस किस्म का जो आप मजाक कर रहे हैं, जो आपस में वो कर रहे हैं, वो करने देंगे? जाहिर वो आप उसमें शामिल ही नहीं है। तो इस वजह से मतलब ये है कि हर चीज़ का अपना एक अंदाज होता है। तो ये नहीं मुनकर जो होता है, ये अच्छा खासा मुश्किल काम है। इसको करने के लिए मुस्लिहीन में भी स्पेशलिस्ट होते हैं, हर एक नहीं होता। जो मुस्लिहीन होते हैं उनमें भी स्पेशलिस्ट, जैसे हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह, इनका अपना एक अल्लाह ताला ने वो कोई अमल का अता फरमाया था, तो इस किस्म की आवाज़ भी फरमाया करते थे। तो उस वक्त एक बहुत बड़े आलिम जो उन्हीं के असातिज़ा में से थे, उनसे किसी ने कहा, हज़रत आप भी तो उलमा है, आप तो इस किस्म की बातें नहीं करते जो अशरफ अली करते हैं, ये क्या हो जाए? तो उस आलिम ने जो जवाब दिया ये दिया, हाँ भाई उनको इन चीज़ों का ज़्यादा दरक है, अवाम के ज़्यादा करीब है, हमें इन चीज़ों का चूंकि ज़्यादा इलम नहीं है, लिहाजा हम इस पर बात नहीं करते, कहीं हम चाह के पीछे बात ना हो जाए। अब सारे बात बिल्कुल साफ कर ली, हालांकि वो उनसे सीनियर आलिम थे, और उनके जा भी थी और लोग उनकी सुन भी सकते थे, लेकिन उन्होंने भी इस वजह से किया कि हमें पूरी मालूमात नहीं है, पूरी मालूमात नहीं है। वाकईतन मुफ्ती जो होता है तब सही मुफ्ती बनता है जब उनको अहवाल का पता हो तमाम इलाके का, यानी मतलब यह कि मतलब बाजार के उतार चढ़ाव, तरीकों, लोगों के मिजाजों का, इन तमाम चीज़ों का पता हो, तब वो मुफ्ती बनते हैं। आजकल तो खैर मुफ्ती बहुत आसानी से बन जाए, लेकिन बहरहाल यह है कि जो गुज़श्ता दौर की वाकयात है उसमें मुफ्ती आसानी से नहीं बनता था, उनमें तमाम सिफात होती थी और वो जो है ना बाकायदा तमाम चीज़ों का ख्याल रखते थे, फिर वो बनते थे। इसी तरह शेख जो होता है ये भी मतलब यह है कि ये इस तरह नहीं होता कि बस, आजकल ये भी कुछ आसानियाँ हो गई इसमें भी, हाँ जी, ये भी इतना आसान नहीं था, यानी शेख बनना ये भी आसान नहीं था, उनके तमाम मिजाजों की शनासाई और इसके बाद, क्योंकि देखे ना किसी किसी शख्स का खुद अच्छा होना ये ऐसा है जैसे कोई सेहतमंद होना। तो सेहतमंद तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे सेहतमंद डॉक्टर होते? डॉक्टर एक अलग मैदान है, वो एक अलग शोभा है, वो सारे सारे लोग डॉक्टर तो नहीं होते। हाँ सेहतमंद, हाँ ये वाली बात, ये अलग बात है कि मतलब ये है कि जो डॉक्टर होता है उनको उन तमाम चीज़ों का पता होता है। वो एक दफ़ा वो एक डॉक्टर थे, तो उनको ज़ाहिर है यहाँ हमारे पास आते थे, उनको कुछ फ़ायदा हुआ ये नफ्सियाती उमूर के बारे में कुछ मसला था उसको, तो फ़ायदा हुआ, तो मुझे कहते हैं कि ये तो आप आ जाए मेडिकल कॉलेज में, इस पर लेक्चर दे दें, लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा क्यों आप नहीं आएंगे, आपके पास बड़ा इलम है? मैंने कहा मैं अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहता, आप तो आपको तो मसला था, लिहाजा आपने मेरी कदर की और आपने उससे फ़ायदा उठाया, बाकी लोगों को तो ये मसला नहीं है, वो कहेंगे तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर किधर हो, तुम हमें क्यों सुनाते हो, क्यों सिखाते हो, हम तुमसे क्यों सीखेंगे? अगर एक आदमी ने भी इस तरह कहा तो मैं तो मजाक उड़ा जाएगा, मैं तो इसके लिए तैयार नहीं हूँ। आज तो आप सीखें और आप जाकर लेक्चर दे दें, आपका लेक्चर वो सुन लें, क्योंकि आप डॉक्टर तो है ना कम से कम, तो आपका लेक्चर वो सुन लेंगे, लेकिन मेरे लेक्चर वो नहीं सुनेंगे। हाँ जी, तो ये असल बात ये होती है कि वाकयतन मतलब माहौल होता है, तरीक़ेकार होता है, मिजाज होते हैं, ये मौका महल होता है, बाज़ दफ़ा एक ही शख्स से एक वक्त में बात कर सकते, दूसरे में नहीं कर सकते। इन्होंने कहा उस वक्त हाल ऐसा होता है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ जी, तो ऐसा मतलब जो है वो हमारे सैयद तस्लीम लाहक साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा किसी बात पर गुस्सा थे, तो असर का वक्त जा रहा था, असर का वक्त जा रहा था, तो मैंने कहा कि हज़रत असर का वक्त मतलब जो है जा रहा है मतलब करीब, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैंने कहा असल का वक्त मकरू हो रहा है, तो हजरत को उस वक्त चूंकि काफी गुस्सा था तो फरमाया हमारे सारे काम मकरू है, हमारे सारे काम मकरू है। फिर मैं चुप हो गया, थोड़ी देर में हजरत ने खुद ही जा रहे मतलब नमाज पढ़ ली। फिर हालांकि माजूर थे मफलूज थे, लेकिन मगरिब की नमाज के लिए मुझे कहते चलो चलते मस्जिद चलते हैं। हाँ जी, मैं हैरान हो गया कि हजरत मस्जिद के लिए जाने के लिए कैसे मतलब हो गए। तो रास्ते में कहा आपने एक बात की थी, आपकी बात सच्ची थी, लेकिन उस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं थी, तो मैंने कहा कम अज़ कम इसके मैं तलाफी करूँ, यानी अपने नफ्स का इलाज करूँ, मैं इसकी तलाफी करूँ। इस वजह से मैंने कहा कि मैं अपने ऊपर जोर लगा कर आज मस्जिद जाता हूँ, मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ। अब ऐसे बुजुर्ग होते हैं तो फिर तो ज़ाहिर मतलब यानी वो तो इसकी तलाफी कर लेंगे, बाकी कर लेंगे, बाकी तो नहीं कर लेंगे, पता नहीं है मुमकिन है। अब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हत्ता कि यहाँ तक खतरनाक बात होती है कि बाज़ दफ़ा कोई ऐसा बात होती है जैसे आप बहुत सख्त मुश्किल में है आदमी, उसको कहते तो नमाज पढ़ो, उसने कहा मैं नहीं पढ़ता, तो काफिर हो गया। तो किस वजह से हो गया? आपके गलत मौके पे बात करने की, मतलब ये तरीक़ाकार नहीं होता। तो इस तरह मतलब जो है ना वो ये हालात मतलब हर एक चीज़ को अपने अपने होते हैं, तो इस वजह से खुद अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि इस वक्त मैं जो इस किस्म की सोच रहा हूँ कि मेरा मसले में तो गड़बड़ नहीं है, तो इस वजह से डरना चाहिए, अल्लाह पाक से मांगना चाहिए और अल्लाह पाक पर जो दिल में डाले उसके मुताबिक अमल करें, लेकिन डरते डरते काम करें, क्योंकि किसी भी वक्त शैतान हमसे कोई भी ऐसी गलती करवा सकता है जिससे सारे किए कराए पे पानी पड़ जाए। अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फरमा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम, तब अलैना तौब।